रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलाभुदेहं दनुजवन कृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। भरद्वाज ऋषि के आश्रम में याज्ञवल्क जी राम कथा सुना रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये राम कथा भगवान शंकर ने पार्वती जी को सुनाई थी कि भगवान का अवतार किन कारणों से हुआ। भगवान शंकर ने अवतार के कारणों में वैकुंठनाथ भगवान की इच्छा और शेषशायी भगवान की इच्छा ये सब कारण बताते बताते अब नारद जी के शाप का सब प्रसंग बताया। अब दूसरा प्रसंग और बता रहे हैं कि अपर हेतु सुनु शैल कुमारी। साथ में ये भी कहते हैं कि देखो हम जो पार्वती तुमको कथा सुनाते हैं ना ये कागभूषुण जी ने कथा गरुड़ जी को सुनाई थी। ये ऐसा क्यों बोलते हैं उसने उसको सुनाई उसने उसको सुनाई उसने उसको सुनाई। ये इसलिए कहते हैं कि बड़े पुरुष होते हैं श्रेष्ठ पुरुष होते हैं उनके बीच में संसार की चर्चाएं नहीं होती हैं भगवान की चर्चाएं होती हैं। आज कागभूषुण जी को तुम जानती हो पार्वती की महाराज जानती हो उनको बहुत बड़े महापुरुष हैं। काक शरीर हो गया तो क्या हुआ। तो बस वो बड़े महापुरुष क्यों हैं वो भगवान का चरित्र गाते हैं। ऐसे ही याज्ञवल्क जी भी कहते हैं कि सुनो भरद्वाज जी ये शंकर की इतनी महिमा क्यों है क्योंकि वे पार्वती जी को ये कथा सुनाते हैं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि उन बड़े आदमियों का बड़प्पन का जो स्वभाव है वो ही लेकर के मैंने कथा को बनाया है। तो चार लोग कथा कह रहे हैं मान सरोवर है चार जने बैठे हैं अपने मर्जी आवे जिस घाट पर चलो अपने मर्जी आवे जिस घाट पर जा सकते हैं क्योंकि चारों जगह कथा हो रही है एक कथा हो रही है सब चारों जगह। तो अपने लिए तो चारों देखो ऐसा सौभाग्य न पार्वती जी को मिला न भरद्वाज जी को मिला न गरुड़ जी को मिला ऐसा सौभाग्य तो अपने को मिला है कि चारों घाटों की कथा मिल रही है। तो अब पार्वती जी को सुनाते हुए बोलते हैं कि अपर हेतु सुनु शैल कुमारी कहूं विचित्र कथा विस्तारे। मैं अब एक दूसरी कथा विस्तार से सुनाता हूं। देखो तुमने पूछा ना कि निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन ब्रह्म परमात्मा कौशलपुर में क्यों आए अयोध्या में क्यों जन्म लिए। क्या भगवान शंकर बोलते हैं देखो ये बात तो शुरू शुरू में कहनी चाहिए थी। नारद जी महाराज को जो भगवान शेषशाही भगवान क्षीर सागर वाले भगवान मिले थे ना वो निर्गुण निराकार नहीं मिले थे। अब कहते हैं कि जय कारण अज अगन अगुन अरूपा। अब मैं निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन ब्रह्म जय कारण अज अगन अरूप अगुन अरूपा ब्रह्म भयउ कौशल पर भूपा वो मैं सुनाता हूं। वही ब्रह्म वो राम है जिसको तुमने जंगल में देखा था और अपने भाई के साथ ऋषि मुनियों के वेश में तुमने देखा था और जिनकी लीला देखकर तुम सती शरीर के अंदर राहु बोरानी तुम उसमें पागल हो गई तुम उसमें भटक गई और अभी तक भी देखो तुम्हारी वो स्मृति आती है ना तो तुम घबरा जाती हो। अजौन छाया मिटती तुम्हारी, तासु चरित सुनु भ्रमरुज हारी। वाह वाह, उन भगवान का चरित्र सुना, कैसी निर्गुण सगुण की एकता कर रहे हैं। तासु चरित सुनु भ्रमरुज हारी, उन्होंने ऐसी सुंदर लीला की, वो मैं तुमको सुनाता हूं। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, सुनो भरद्वाज जी, शंकर जी की वाणी सुनकर के उमा सकुचि सप्रेम, उमा जो है वो संकोच में भी पड़ गई और मुस्कुराने भी लग गई। सकुचि सप्रेम उमा मुस्कानी, देखो संकोच भी है, प्रेम भी है और मुस्कान भी है। संकोच तो इसलिए कि देखो मैंने राम जी का चरित्र उस समय सुन लिया होता और मैं परीक्षा नहीं लेती तो आज ये मुझे शंकर भगवान उपालंब कैसे देते, इसलिए संकोच हो रहा है अपनी करतूत पर। प्रेम इसलिए हो रहा है कि देखो कैसे मुझे प्राणनाथ पतिदेव मिले, जो मुझे भगवान शंकर की बड़ी, भगवान राम की बड़ी पवित्र कथा सुनाते हैं, प्रेम उमड़ रहा है और मुस्कान है, ये अंदर का आनंद है, अंदर का आनंद। सुनते सुनते पार्वती अंदर में आनंद में मर गई। तीन भावाए, सकुची सप्रेम उमा मुस्कानी, भगवान शंकर हैं वो भी बड़े प्रसन्न हुए और वो बताने लगे, तो मैं तुमको वही कथा सुनाता हूं भरद्वाज जी, तुम बड़े मन लगा करके सुनना, क्योंकि राम कथा इस कलयुग के मल को दूर करने में जितनी समर्थ है उतनी कोई समर्थ नहीं है। अब सुनाते हैं, कहने लगे देखो, स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, मनु कई हुए हैं, मनु नाम के कई हुए राजा, लेकिन स्वयंभू मनु एक ही हुआ। ये स्वयंभू क्या चीज होती है? स्वयंभू मने मने स्वयंभू का लड़का, स्वयंभू है ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी का लड़का जो मनु हुआ। ये मनु और शत्रुपा सबसे पहले ब्रह्मा जी से ही पैदा हुए थे। ब्रह्मा जी ने देखा कि सृष्टि नहीं बढ़ रही है, संकल्प करते करते सृष्टि बढ़ाई नहीं बढ़ा, तो ब्रह्मा जी के एक शरीर से मनु पैदा हो गए और एक शरीर से शत्रुपा पैदा हो गए, आधे शरीर से, और उससे आप हम सभी मानव कहलाते हैं। मनोरपत्यम पुमान मानव है, ये लिख भी दिया यहां, स्वयंभू मनुअर शत्रुपा, तिनते भे नर सृष्टि अनुपा, ये अनुपम नर सृष्टि बनी है। देखो ब्रह्मा जी है ना, वो मनुष्य पहले बन नहीं रहे थे ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी कई सृष्टि बनाए, बनाते 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 देवताओं को भी बनाया, सबको बनाया, फिर एक चर्षणी बनी, चर्षणी सृष्टि। चर्षणी सृष्टि क्या हुई कि वो दिमाग वाली तो बनी, कर्तव्य अकर्तव्य का किंचित बोध तो हुआ लेकिन पूरा बोध नहीं था। तब उस चर्षणी सृष्टि के बाद ब्रह्मा जी ने मानवी सृष्टि बनाई, लेकिन हमारे मनु और शत्रुपा तो ऐसे थे कि वो राजा बने, मनुष्यों के राजा बने और अपने आचरण इतना बढ़िया कि वे धर्म को कभी छोड़ते ही नहीं थे, इसीलिए उनके उत्तानपाद और प्रियव्रत दो बेटा हुए और तीन उनकी बेटियां हुई। एक बेटी थी देवहूति, एक थी आकुति, एक थी प्रसूति, ये तीन बेटियां हुई। तो जो देवहूति थी उसका तो सब दुनिया जानती है, कर्दम ऋषि की पत्नी थी और सांख्य शास्त्र को प्रकट किया, ऐसे कपिल भगवान की वो माता थी। तो ये इतनी धर्मात्मा सृष्टि क्यों हुई कि मनु और शत्रुपा में प्रारंभ से ही धर्म के बड़े विलक्षण संस्कार थे। तेई मनुराज कीन बहु काला, ध्यान से सुनना, मनु ने बहुत वर्षों तक शासन किया और जो भगवान की आज्ञा थी उसका पालन किया, परंतु होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयौ हरि भगति बिनु। चौथी अवस्था आ गई। चार अवस्था होती है, 25 वर्ष की एक अवस्था, फिर 25 वर्ष की एक, फिर 25 वर्ष की एक अवस्था और फिर 25 वर्ष की एक अवस्था। तो भवन बसत भा चौथ पन 75 वर्ष पार कर लिए, होइन विषय विराग, विषयों से वैराग्य नहीं हो रहा है, राजपाट छोड़ करके जंगल में जाने की क्यों नहीं रुचि हो रही है, हृदय बहुत दुख लाग, इस बात के उनके मन में बहुत दुख लगा। देखो बड़े पुरुषों का दुख होता है वो और ही ढंग का होता है, हम लोगों का दुख है वो किसी काम का नहीं, हम तो संसार के लिए रोते हैं, लेकिन बड़े पुरुष होते हैं वो अपने कल्याण के लिए रोते हैं, उनकी आफत ही दूसरी है कि देखो हमारी उम्र चली गई, विषयों से वैराग्य नहीं हुआ, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयउ हरि भगति बिनु, भगवान की भक्ति नहीं बटोरी यहां। जैसे कोई आदमी, एक आदमी को भेज दिया जाए कि साहब ये बहुत अच्छी प्रदर्शनी है, यहाँ बहुत सामान मिलता है, यहाँ सामान मिलता है, अब इसमें देखो आप यहाँ से ले वहां तक घूमो, जो सामान आपको अच्छा लगे वो लेके यहाँ से पार हो जाओ, ठीक है साहब। तो इधर से घुस आए और यहाँ देखने लगे, तरह तरह के तमाशा देखने लगे, तमाशा देखते देख सोना चांदी मणि माणिक की कई दुकानें थी, क्या नहीं अभी तो तमाशा देखेंगे, वो तमाशा देखते 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 उधर चला गया और वहां तो कुछ मिला नहीं, वहां पर केवल कोयले की बोरी थी, वो कोयला की बोरी लेकर रवाना हुआ। ऐसे ये मानव शरीर है, इसमें भगवान की भक्ति, भगवान का भजन, सद्गुण सदाचार सद्व्यवहार सद्ज्ञान, ये तो सब हीरे पन्ने थे, ये तो हमने लिए नहीं, और पाप पुण्य सब, और ये पाप है, स्वार्थ है, अहंकार है, ये सब कचरा कोयलों का लेकर के हम रवाना हो गए, क्या क्या फल मिला। तो हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगति बिनु, ये जो इनके मन में दुख हुआ ना, ये दुख बहुत ऊंची चीज है। इसी दुख का प्रभाव क्या हुआ कि उन्होंने बरबस राज सुतई तब दीना, अपने बेटों को बरबस माने विवश, अगर भैया तुम ले, ये आफत है, आफत आफत देकर के, और वो पति पत्नी दोनों वन में चले गए, नैमिषारण्य में गए। नैमिषारण्य क्यों गए, इतना बड़ा विशाल भारत के नैमिषारण्य में जितने संत महात्मा रहते उतने कहीं नहीं रहते थे। हमारे सूत जी महाराज भागवत सुनाने के लिए नैमिषारण्य गए, सूत जी ने देखा कि जो ये भागवत सुनाई है सुखदेव जी महाराज ने, इनमें कोई भी भागवत का हूबहू प्रचार नहीं करेगा, सब भागवत रूप है। नारद जी ने सुनी, मैत्रेय जी ने सुनी, भरद्वाज ने, 26 ऋषि थे वहां, 26 ऋषियों ने सुना, सब सुनकर के वही मस्त हो गए। पर हमारे सूत जी ने देखा कि अरे केवल हम अपने लिए थोड़ी सुनना, अपने को तो सारी दुनिया को भी तो सुनाना है ना, क्योंकि ये ज्ञान ये आनंद तो जितना बांटा जाएगा उतना ही बढ़ेगा। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूरब बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े और बिन खर्चे घट जात। तो सूत जी महाराज ने नैमिषारण्य में, क्यों बहुत संत रहते हैं वहां, बसई तहां मुनि सिद्ध समाजा, तय ही हरसी चलेउ मनु राजा, मनुराज वहां गए गोमती नदी का किनारा, वहां बड़े प्रेम से वहां पर ऋषि मुनियों के बीच में रहे और उन्होंने क्या किया, द्वादश अक्षर मंत्र पुनि, द्वादशाक्षर मंत्र का जाप किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इतना पवित्र मंत्र है, लोग कहते हैं कोई मंत्र बताओ, कोई ऐसा करो, सबसे बढ़िया तो राम नाम मंत्र था ही, लेकिन किसी को राम राम में विश्वास कम हो गया तो रोज लेवा ही हमें, तो मानो और कोई गुप्त मंत्र बताओ, और कोई ऐसो बताओ, ये बताओ, तो भाई उसके लिए द्वादशाक्षर मंत्र है, ये वैष्णवों के लिए बहुत अच्छा मंत्र है। बात वही है जो राम राम में है, वही बात उसमें है। पर अब क्या करें, लोगों का दिल ऐसा ही है, वो जिस बात को गुप्त करके बताएंगे उस बात को ज्यादा श्रद्धा से देखेंगे, तो उन्होंने द्वादश अक्षर मंत्र का जाप किया। वो कौन सा है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 अक्षर हैं इसमें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादश अक्षर मंत्र है। ये द्वादश अक्षर मंत्र नारद जी ने ध्रुव जी को भी दिया था। ये संतों के गुप्त मंत्र हैं कि बड़ा विचित्र मंत्र। द्वादशाक्षर मंत्र का उन्होंने बड़े प्रेम से जप किया। वासुदेव पद पंकुरु है दंपति मन अति लाग। ध्यान देना हो, अभी अपने लेख में बात पढ़ी ना कि जिसका नाम ले हो उसका ध्यान करो। तो द्वादशाक्षर मंत्र में वासुदेव नाम आता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो वासुदेवाय माने वसुदेव के पुत्र भगवान कृष्ण, ये भी अर्थ होता है। और वसुदेव माने व्यापक परब्रह्म परमात्मा। वसुदेव माने चित्त और उसमें विराजमान व्यापक परब्रह्म परमात्मा। निर्गुण निराकार में भी वासुदेव आ सकता है। जैसे निर्गुण निराकार में राम आता है, रमन्ते योगिनो अस्मिन् इति राम है। योगी लोग जिसमें रमण करते हैं वो राम। और एक रमयति इति राम है, जो सबको आनंदित करता है, सब में रमण करता है, सबको उल्लास देता है, वो राम है। तो निर्गुण सगुण दोनों में ही राम आता है, ऐसी वासुदेव आता है। पर हमारे मनु महाराज थे ना, वो सगुण वासुदेव का स्मरण कर रहे थे, क्योंकि वासुदेव पद पंकरु है दंपति मन अति लाग। अब एक बात और है भाई, पति और पत्नी दोनों एक इष्ट रखते हैं ना, इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। पति का भी वही इष्ट और पत्नी का भी वही इष्ट ऐसा मिल जाए तो फिर कहना ही क्या है, क्योंकि उसमें पति की साधना का प्रभाव पत्नी पर और पत्नी की साधना का प्रभाव पति पर पड़ता है। एक इष्ट होने से मन, स्वभाव, स्नेह, बर्ताव, इसमें बड़ी पवित्रता आती है। इष्ट एक रहे तो बहुत अच्छी बात है। तो वासुदेव पद पंकुरु दंपति, पति और पत्नी दोनों का ही वासुदेव के चरण कमलों में बड़ा प्रेम था। इतना प्रेम हुआ कि उनके खाने पीने की भी चिंता नहीं रही। साग फल ले लिया, खा लिया, कंदमूल फल खा लिया और खा लिया। लोग कहते हैं ऐसे भूखे कैसे, भूखे जान करके नहीं रहते थे वो प्रेम रस से आनंद। देखो अब आपको क्या बताएं, इसमें अच्छे अच्छे संतों की कही हुई बात है। राम 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 राम, जब भगवान का स्मरण करते हैं तो एक अंदर से एक बहुत मीठा रस आता है। वो मीठा रस आता है, उस मीठे रस से कई बीमारियां खत्म होती है, भोजन पचता है और शरीर ठीक होता है, चित्त प्रसन्न होता है। यहां से कहते हैं, यहां एक तालू में एक अमृत का स्थान होता है। वो अमृत का स्थान जब राम 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 विशेष रूप से ध्यान सहित करते हैं तो ये अमृत का इधर झरना यू आता है। तो ये अपनी जो ये कुंडलिनी होती है, वो कुंडलिनी का जो मुख है वो नस वो यूं होती है, सर्प की तरह से वो उस अमृत को पीती है। वो पीती उस समय में एकदम एकाग्र हो जाता है, शरीर एकदम निस्तब्ध हो जाता है, माने निश्चेष्ट हो जाता है, स्तब्ध हो जाता है, निस्तब्ध नहीं स्तब्ध हो जाता है। और कोई चिंतन नहीं होता, उस आनंद में वो डूबता है। और यही बात छोटी सी भक्ति से माने प्रेम से इस अवस्था को प्राप्त हो सकता है। अगुण अखंड अनंत अनादि जही चिंतई परमारथवादी, सुनो पार्वती वो वासुदेव तत्व क्या है कि वो निर्गुण है, अखंड है, अनंत है, अनादि है। जिसको ज्ञानी महात्मा हरदम उस ज्ञान में डूबे रहते हैं। नेति नेति जही वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनूपा, ये निजानंद है, निजानंद माने अपने अंदर रहने वाला आनंद का स्रोत हो। शिव विरंच विष्णु भगवाना जपई जासु अंश ते नाना, ये ब्रह्मा विष्णु शिव ये सब तीनों के तीनों उसी तत्व के अंश हैं और उसी तत्व का स्मरण करते हैं। वे परम महाविष्णु भगवान, देखो एक विष्णु होते हैं एक महाविष्णु होते हैं, एक कृष्ण है एक महाकृष्ण है, एक राम है एक महाराम है। ये भक्तों की बात है, भागवत में भी आता है ऐसा। भगवान कृष्ण है वो अर्जुन को ले गए थे सात समुद्र पार, एक दिव्य समुद्र के अंदर ले गए, वहां पर एक बड़ा मणियों से बना हुआ महल, उस महल के अंदर भगवान का बहुत दिव्य श्री विग्रह। अर्जुन से कहा, अर्जुन ये महानारायण है, प्रणाम करो इनको। अर्जुन ने प्रणाम किया, पर अर्जुन ने शकल देखी, शकल देखी तो इनकी शकल और कृष्ण की शकल एक मिलती है, बार बार देखता है वो। भगवान कहते क्या देखता है, इनको प्रणाम करो। कि महाराज प्रणाम तो करता हूं लेकिन, लेकिन क्या होता है, लेकिन ये कि महाराज आपकी रून की शकल मिलती है। अरे वो क्या बोल रहे हैं उनकी बात सुन। अब वो कहने लगे, अरे कृष्ण और अर्जुन आप दोनों नर और नारायण हो, तुम्हारा समय पूरा हो गया, इसलिए मैं ब्राह्मण का बच्चा यहां लाया हूं ताकि ढूंढते ढूंढते मेरे पास आओ, मेरा आदेश तुमको देऊं। ओ देखो अर्जुन ये महानारायण है ना, वहां से बच्चा लेकर के आ गए। अर्जुन मस्त हो गए, अर्जुन ने देखा कि ये महानारायण और ये कृष्ण, ये लीला में दो दिखते हैं, वास्तव में दोनों एक हैं। भगत ही तो लीला तनु गह ही, ऐसे ही प्रभु सेवक बस अह ही, भगत ही तो लीला तनु गह ही। भगत के कारण से भगवान, वही महाविष्णु भगवान अपना जैसी भगत की इच्छा होती है वैसा लीला का शरीर धारण करते हैं। अब देखो उनको भगवान के भजन में बड़ा आनंद आ रहा था, मनु और शत्रुपा को तो 6000 बरस तक केवल जल पीकर के व्यतीत किया। अब कहते 6000 बरस, ये तो समझ में नहीं आता, ये तो सब मनुष्य की बुद्धि के विपरीत बातें हैं, सोचने की शक्ति। 6000 वर्ष कैसे होगा जी, 6000 वर्ष तो बहुत होते हैं। कि कितने होते हैं कि एक वर्ष में 360 दिन होते हैं, 6000 वर्ष में तो कितना ही लंबी आयु है, तो बात बैठी नहीं, गड़े उतरी नहीं। अच्छा और देखो, संबत सप्त सहस्र पुनि रहे सभी राधा, 6000 वर्ष तो केवल जल पिया और 7000 वर्ष तक केवल समीर आधार वायु पी करके रहे, तो 7 से 13 वर्ष 13000 वर्ष तक जची नहीं बात। तो कहते हैं कि देखो आप इतना ही मत मानो कि 360 दिन का वर्ष होता है, ये जो गणित है ये अभी वर्तमान के व्यवहार के लिए गणित में 360 दिन का एक वर्ष मानते हैं, लेकिन अनादि काल से कालक्रम, जब से सृष्टि चल रही तब से कालक्रम चल रहा है, उस कालक्रम में जो वर्ष है उसका नाम छोटे से छोटे का जो काल होता है उसका नाम भी वर्ष, चुटकी बजाय इसका नाम वर्ष है, वर्ष हो गया साहब। अब एक वर्ष, अब 360 को देखो, एक चुटकी का समय देखो, एक थोड़ा ही है, ये देखो साहब एक वर्ष हो गया, ये अपनी आंख पलक में एक वर्ष हो गया, एक वर्ष। काल का जो सूक्ष्म से सूक्ष्म अंश है वो भी वर्ष कहलाता है। तो अब बताओ 6000 वर्ष कोई बड़ी बात नहीं है, 7000 वर्ष कोई बड़ी बात नहीं है, दशरथ जी की उम्र 60000 वर्ष की है कोई बड़ी नहीं है, छोटे से छोटे काल में देखा जाए तो कोई बड़ी नहीं है, सेकंड से भी छोटा होता है समय, उसमें यदि 60000 वर्ष हो जाए और 60000 सेकंड का वो अंश, 60000 चुटकी, 6000 चुटकी कोई बड़ी नहीं है। और आगे चलो, अभी गोस्वामी जी तृप्त थोड़ी हो गए, 6000 वर्ष तक जल पिया, 7000 वर्ष तक वायु के आधार पर रहे और बरस सहसदस त्यागे ही सो, और 10000 वर्ष तक उन्होंने ये श्वास लेना भी छोड़ दिया, ठाडे रहे एक पद दो, एक पैर पर खड़े रहे। तब ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों के तीनों आए और कहने लगे कि महाराज कोई वरदान तो मांगो। मांगो उबर बहु भांति लोभाए, इतना प्रेम था उनका पर ब्रह्म परमात्मा में। तो ब्रह्मा विष्णु महेश जो उनके साक्षात महाविष्णु के जो ये तीनों स्वरूप है, ये वहां नहीं ये आए तो उन्होंने कुछ नहीं मांगा। तदपि मनाक मन ही नहीं पीरा, उन्होंने न तो कुछ मांगा और न उनके कोई पीड़ा हुई। अस्थि मात्र हुई रहे शरीर, उनका शरीर केवल हड्डी का ढांचा मात्र हो गया। खावे नहीं पिए नहीं तो क्या होगा, ढांचा मात्र शरीर और पीड़ा कुछ है नहीं। तब आकाशवाणी हुई, ये तीनों बिचारे कुछ नहीं गए कुछ नहीं बोले तो क्या करें। तब आकाशवाणी हुई, मांगो मांगो बरु भे नभ बानी, बड़ी कृपा भरी, मांगो मांगो मनु और शत्रुपा कुछ मांगो। इतना प्यार भरा हुआ था इस मांगो मांगो में, जैसे कोई मरा हुआ प्राणी जीवित हो जाए। मृतक जियावन गिरा सुहाई, आप दोनों यूं देखना कितना पवित्र शब्द है। हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, ऐसा लगा कि जैसे हम तो अभी अपने भवन से आए और अभी बैठे हैं तपस्या में, और इतने जल्दी देखो हमको मांगने की बात आई। श्रवण सुधा सम वचन सुनी, पुलक प्रफुल्लित गात, बोले मनु करि दंडवता, प्रेम न हृदय समात। ऐसी श्रवण सुधा सम वचन सुनी, कानों के लिए अमृत के समान मीठे वचनों को सुनकर के मनु महाराज यूं दंडवत प्रणाम करके और बोलने लगे, उनका बोली लड़खड़ाने लगी प्रेम के कारण से। कहने लगे महाराज आप सेवकों के कल्पवृक्ष हो, कामधेनु हो, आपके चरणों की धूल को तो ब्रह्मा विष्णु महेश सब पूजते हैं, आप शरणागत की रक्षा करने वाले हो महाराज, आप अनाथों का हित करने वाले, अनाथों का हित करने वाले, हम पर स्नेह करके आप ये मांगने के लिए बोल रहे हो महाराज, आप कौन बोल रहे हो महाराज, वो आप सामने पधारो, हम आपसे क्या मांगे, हम यही मांगते हैं कि आपका जो स्वरूप भगवान शंकर के हृदय में बैठा हुआ है और आपका जो स्वरूप काकभूषण जी के मन में बैठा हुआ है, शास्त्रों ने जिसको निर्गुण सगुण कहकर के खूब महिमा गाई है प्रभु, वो रूप एक बार आप हमको दिखा दीजिए। अभी तो केवल हमने आपकी वाणी सुनी है, आप कौन से दिव्य श्री विग्रह से ये वाणी बोले हो वो आप हमको दिखाइए, कृपा कीजिए महाराज, हम आपके शरण में आए हुए हैं। इतनी सरलता, ये देखो ये सरलता भक्ति में ही होती है, ज्ञान में इतनी सरलता नहीं आती है। दंपति वचन परम प्रिय लागे, इतना आनंद आया भगवान को कि भगत वचल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। संपूर्ण विश्व जिनके अंदर निवास करता है वे भगवान मनु और शत्रुपा के लिए प्रकट हो गए। क्या दिव्य भगवान का रूप, नील सरोरुह नील मणि, नील नीर धर श्याम। देखो बरसात के समय में जो नीला आकाश होता है ना, वो भगवान का स्वाभाविक स्वरूप होता है, ऐसा नीला रूप। ये ऐसा नीला रूप जैसे इन दिनों में बदल रहित जो आकाश है एकदम बहुत चमकता है वो नीला नीला, अथवा खूब घास होती हो, ये दूब है घास है और बरसात खूब हुई हुई, वो खूब ऊंची आई हुई घास रूप, उसके नीचे यूं दृष्टि डालो एक अलौकिक नील मणि, हरित हरित वर्ण को लिए हुए जो नीलिमा है, कुछ हरापन और कुछ नीलिमा, अंदर ही अंदर एक दूब के अंदर या घास के अंदर इतनी बड़ी घास आ जाए फिर उसको यूं देखें तो एक खूब घास के अंदर एक अंधकार साग होता है मणि जैसा, उसमें हरितिमा है और उसमें नीलिमा है, उन दोनों का जो संयोग होता है ऐसा भगवान का श्री विग्रह होता है। नील सरोह नील मणि नील नीर धर श्याम लाजई तन शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम। भगवान श्याम वर्ण के क्यों है? भगवान श्याम वर्ण के हैं। देखो भगवान के ऊपर श्यामता, ऐसी चमकने वाली प्यारी श्यामता है, वो एक भद्दी कालिमा नहीं है, बहुत सुनहरी श्यामता है, वो आकर्षक श्यामता होती है। बरसात में बदल कुछ नहीं है और आकाश में नीलिमा होती है, उसको देखकर अनुमान लगता है कि आज बहुत गहरी नीलिमा है, आज बरसात आएगी, बड़ी आशा होती है। ऐसे जो भगवान का जो ये नील स्वरूप होता है, श्याम स्वरूप होता है, वो भक्ति के लिए बहुत बड़ी निर्भरता देने वाला होता है। ऐसा सुंदर स्वरूप है जिस पर करोड़ों करोड़ों कामदेव मुग्ध हो जाते हैं। ऐसा दिव्य भगवान का स्वरूप वहां प्रकट हुआ। शरद मयंक वदन छवि शिवा। देखो भगवान का मुख है ना, उसको गोल देखना, भगवान का मुख गोल होता है। जैसे जैसे पूर्ण चंद्रमा आकाश में होता है, जब चंद्रमा पूर्ण होता है उस समय पूरे आकाश को देखने का मन ही नहीं, चंद्रमा को ही देखने का मन होता है। तो शरद मयंक बदन छवि सीमा, चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा। एक एक अंग की सुंदरता देखी उन्होंने, मुख को देखा कि जो चंद्रमा के समान गोल है, चंद्रमा के समान आकर्षक है, और उनके कपोल बड़े अच्छे हैं जिनके ऊपर ये इसकी झाई पड़ती है, ये कानों के जो कुंडल है उन कुंडलों की और कपोलों की झाई अलग ही होती है, और उनकी चिबुक चिबुक कहते हैं ठोड़ी को, ठोड़ी है बहुत सुंदर है, और ग्रीवा कैसी है, दर ग्रीवा माने शंख के समान गोल गोल उनकी एक गर्दन है। अधर अरुण रद सुंदर नासा, और उनका जो ये होठ है, ये होठ ये लाल लाल होठ बहुत सुंदर है, एक एक अंग उनका बड़ा सुंदर। भ्रिकुटि मनोज चाप छवि हारी, तिलक ललाट पटल दुतिकारी, कुंडल मकर मुकुट सिर, एक केवल मुखी मुखा वर्णन हो रहा है अभी। के हरि कंधर सिंह के समान ऊंचे ऊंचे उनके ये कंधे हैं, चारु जनेऊ बाहु विभूषण सुंदर तेऊ, और करिकर सरिस सुभग भुज दंडा, और भगवान की जो ये भुजा है ये हाथी की सूंड के समान है, यूं यूं लचक खाती हुई। अब देखो यूं भगवान यूं रहते हैं, उनकी भुजाएं हाथी की सूंड के समान, हाथी की सूंड ने यूं लचक खाती है, ऐसे भगवान की भुजा यूं लचक खाती है। करिकर सरिस सुभग भुज दंडा, कटि निशंग कर सर को दंडा, उनके बाण धनुष वगैरह सब तड़ित विनंदा का पीत पड़े, ऐसा भगवान का सुंदर स्वरूप। और उनके पास में उनकी शक्ति आदि शक्ति छवि निधि जगमूला, भगवान अकेले नहीं आए, भगवान और भगवान की शक्ति, वो शक्ति उनके साथ बाई तरफ थी। देखो हमारे तुलसीदास जी महाराज कितनी मर्यादा में हो, स्वरूप का वर्णन किया तो भगवान का किया और आदि शक्ति का स्वरूप का वर्णन नहीं किया, बहुत मर्यादा में है तुलसीदास जी महाराज, क्योंकि वहां अंग प्रत्यंगों का वर्णन करना अपराध होता है, इसलिए वहां वाम भाग सोभति अनुकूला आदि शक्ति छवि निधि जगमूला, खूब सुंदर है बस इतना कह दी और कुछ नहीं। वो कौन थे महाराज? कि राम वाम दिशि सीता सोई, ये साक्षात राम जी और सीता ही थे। अब कहना तो ये चाहते हैं कि ये राम जी दशरथ जी के बेटा क्यों हुए, और ये तो वरदान से पहले ही प्रकट हुए थे, ये वो राम सीता नहीं है, ये दशरथ नंदन राम सीता नहीं है, ये रमन्ते योगिनो अस्मिन् इति राम है, उनके साथ की जो शक्ति है वो शक्ति और ब्रह्म ये दोनों वहां पर आए हैं, सगुण रूप में आए। अब उनको देखे तो भाई दंड परे दंडे गही पद पानी, एकदम दंडवत प्रणाम किया उन्होंने, भगवान ने उनका सिर का स्पर्श किया और बोले बोले कृपा निधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जानी। ओहो मनुजी मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूं, मैं बहुत प्रसन्न होकर आज आपके पास आया हूं, आप मेरे से कोई वरदान मांगिए। देखो उन्होंने वासुदेव की भक्ति की थी, ये सीता जी बीच में कहां से आ गई। भगवान कहते अति प्रसन्न मोहि जान, जो भक्त जितने आप मेरी भक्ति करता है ना उतने ही रूप में नहीं आता हूं, जब मैं प्रसन्न होता हूं तब मैं उसकी सोची हुई समझी हुई भक्ति से भी और विलक्षण शक्ति लेकर के आता हूं। प्रसन्न नहीं अति प्रसन्न मोहि जान, और मांगी बर जोई भाव मन महादानी अनुमान। तुम अपने मन में ये सोच लो कि जो तुम मांगोगे वो सब तुमको मिल जाएगा, जो मांगोगे। सोनी प्रभु वचन जोरी जुग पानी धरी बोल धरी धीरज बोली मृदु बानी। कि महाराज आप हमको मांग, इतना बढ़िया पवित्र आपके दर्शन हो गए, क्या आपका रूप, और फिर आप अति प्रसन्न होकर के बोल रहे हैं, इतनी आप कृपा कर रहे हैं, अब क्या मांगू महाराज, क्या मांगे। नाथ देख पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे, ऐसा तो मैंने मांगा ही नहीं था, सोचा ही नहीं था, क्या दिव्य रूप आपने हमको दिया है। मेरे मन में तो और तो कुछ है नहीं महाराज, जैसे कोई दरिद्री आदमी, महान दरिद्री, वो यदि कल्प वृक्ष के नीचे चला जाए तो वो बहुत मांग नहीं सकता है, क्योंकि उसने देखी नहीं जीवन में कोई संपत्ति। एक बार एक भगत तपस्या कर रहा था, किसी के कहने से करने लग गया, भगवान शंकर आए वरदान मांग, तो उन्होंने देखा कि भगवान शंकर से क्या मांगू, ये तो सब कुछ देने वाले हैं, देने वाले होंगे, क्या मांगू, तो महाराज मुझे रोज चावल रोटी चावल और दाल मिल जाए बस। भगवान ने कहा अरे और यही मांगा क्या, तो महाराज मुझे तो यही नहीं मिल रहा था, चावल दाल नहीं मिल रहे थे, भूखा मर रहा था, तो मैं यही चीज मांगू और क्या मांगू। तो यथा दरिद्र विबुध तरु पाई बहु संपत्ति मांगत सकुचाई, वो ज्यादा मांग नहीं सकता, वो दरिद्री आदमी, उसको उसको जितना मांगता वो ही बहुत दिखता है। इसलिए महाराज मेरे मन में तो एक ही लालसा है, आपके लिए तो वो कोई कठिन है नहीं, मेरे लिए वो पहाड़ बनी हुई है। तुम्हें देत अति सुगम गोसाई और अगम लाग मोई निज कृपणाई, मेरे बस में तो वो है नहीं और आपके लिए बड़ी सुगम बात है, एक मेरे लालसा है महाराज। और वो आपको अपने मन में सब मालूम है, मैं क्या चाहता हूं जो आपको मालूम है, मेरे मुंह से क्यों कहूं महाराज, आप तो मेरी उस लालसा को पूरी कर दीजिए। भगवान ने कहा आप बोलो तो सही। देखो भगवान भी क्या है जानते हैं, बेचारे सही बोल रहे हैं मनु जी कि तुम जानो सब अंतर जामी पूर्व मोर मनोरथ स्वामी, मेरी सब बात जानते हो तो आप पूरी कर दीजिए। भगवान के नहीं मांगो, ये क्यों करते हैं ऐसा, भगवान अंतर्जामी है कर दे। नहीं भगवान कहते हैं मांगने से इसका मेरे से संबंध जुड़ेगा। देखो भगवान कितने संबंध जोड़ने के प्रेमी बनते हैं। सकुच बिहाय मांगो नृप मोही मोरे नहीं अदेय कछु तोही। अरे तुम मांगो तो सही, तुम्हारे लिए कोई अदेय वस्तु मेरे पास है क्या। तो कहा महाराज बार बार आप बोल ही रहे हो तो दान सिरो मनि कृपा निधि नाथ कहूं सति भाव चाहूं तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। आप महाराज दानियों में श्रेष्ठ है, ऐसा दानी कोई दूसरा है नहीं, कृपा से भरे हुए हैं। इसलिए प्रभु मैं आपसे सत्य सत्य बात कहता हूं कि मुझे तो आपके जैसा लड़का चाहिए। भगवान बोले एवं अस्तु। पर सुनो सुनो मनु जी, आपने तो मांग लिया, अब मैं दे रहा हूं, मेरी बात सुनो।
क्या कहा?
मेरे जैसा लड़का? अब मेरे जैसा लड़का मैं कहां ढूंढने जाऊंगा भाई, मेरे जैसा तो आज तक कोई हुआ ही नहीं। आप सरिस खोजो कह जाए, इसलिए मैं मेरे जैसा तो नहीं होऊंगा, नहीं ला सकता। नृपतव तनय होब में आए, जब तू राजा हो जाएगा या हे राजन, मैं स्वयं ही तुम्हारा लड़का हो जाऊंगा, मैं स्वयं ही तुम्हारा लड़का होकर के आ जाऊंगा। अब बोलो, अब क्या बोलते हो? तो चुप हो गए। भगवान ने कहा, शत्रुपा जी अब आप मांगो, देखें क्या मांगते हो, आप मांगिए। राजा तो बड़े चतुर निकले, उन्होंने मुझे अपना बेटा मान मुझसे अपने जैसा बेटा मांग लिया, तुमको भी कोई बात, तुम भी मांगो। तो शत्रुपा जी बोलती है कि महाराज, हमारे पतिदेव ने जो मांगा है, पतिदेव से अलग मेरी क्या इच्छा हो सकती है? पति की इच्छा में पत्नी की इच्छा होती है। देखो, पति का महत्व तो बहुत विचित्र है माताओं बहनों के लिए। ये मामूली बात ये देखते हैं, यूं ही उनका स्वभाव नहीं मिलता है, वो डांट देते हैं, वो फटकार देते हैं, घर में कलह हो जाती है, रोते हैं। वो थोड़े से इस वातावरण से ऊंचे उठ करके देखें तो कल्याण के लिए पति और पत्नी का जो संबंध होता है वो बहुत बहुत उच्च कोटि का होता है। वहां अपने मन को पति के मन के साथ मिलाने में जो उनकी अध्यात्म आराधना, अध्यात्म साधना पवित्र होती है, वो किसी से नहीं होती। तो कहा, महाराज हमारे पतिदेव ने जो मांगा है, सोई कृपाल मोई अति प्रिय लागा, मेरी कोई अलग से इच्छा थोड़ी ही है, मैं अलग से तो आपसे कुछ नहीं मांग सकती महाराज। बस एक बात है, आप तो बहुत बड़े हो, आप तो ब्रह्मा जी को भी पैदा करने वाले हो, ब्रह्म सकल और अंतर्जामी निराकार रूप से आप सब जगह व्यापक हो, ऐसा सब लोग जानते हैं। और जो आपके निज भक्त, आपके अंतरंग प्यारे भगत होते हैं, वही आपके अपने होते हैं। तो मैं ये चाहता हूं आप हमारे पुत्र तो बने, लेकिन पुत्र होने के साथ साथ वो हमको सुख मिलना चाहिए। वो सुख देखो, उन्होंने तो पुत्र मांगा और शत्रुपा ने कहा, सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण सनेहु, सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, हम ही कृपा करि देव। खूब मांग लिया, छह चीजें मांगी, छह चीजें। हमारी माता शत्रुपा ने छह चीजें मांगी, तो वही सुख देव, वही गति देव, वही भक्ति देव, वही चरणों का स्नेह देव जो बड़े बड़े भक्तों को मिलता है, और सोई विवेक और सोई रहनी प्रभु, हमारी कृपा कर देव, कृपा करके देना ही, आफत समझ के मत देना। अब कोई कहे कि साहब रामावतार में ये सुख, ये गति, ये भक्ति, ये चरण, ये विवेक, ये रहनी, छह चीज मांगी, तो ये छह चीजें रामावतार में कहां मिली? कि सोई सुख, कौशल्या के गोद, जब कौशल्या की गोद में नाचते थे ना भगवान, तो सोई सुख, कौशल्या जी को जो सुख मिला वो सुख। सोई गति, गति कौन सी? गीतराज की गति, गति दीनी उदार। गीतराज को भगवान ने कैसी गति दी थी? गीतराज का देखो, भगवान क्या शरीर हाथ लगा, बाप के हाथ नहीं लगा भगवान के, दशरथ जी के शरीर को जलाने में भगवान का हाथ नहीं लगा, और गीतराज का भगवान ने अपने हाथ से दाह संस्कार, उसको उठाया और भगवान ने कहा कि मेरे बाप की जगह आज तेरा अंतिम संस्कार कर रहा हूं। तो उसका संस्कार किए ना, तो आग जीवी लगाई थी उसमें से गीद रूप धरी। गीद राज ने अपना वो रूप जो दिव्य शरीर प्रकट हो गया चिता में से, गीद राज की चिता में से। तो सोई गति, गीद राज को जो गति मिले ना वही हमको गति मिले। सोई सुख सोई गति सोई भगति। अब भक्ति कौन सी? अब भक्ति तो वही रामावतार में जगह जगह है। किसकी भक्ति ले? दशरथ जी की भक्ति। सोई भगति, राम जी के बिना प्राण ही त्याग दिए उन्होंने। सोई भगति और सोई निज चरण सनेह, और आपके निज चरणों का प्रेम। चरणों का प्रेम किसने? विभीषण जी महाराज ने। विभीषण जी महाराज ने कहा है वहां कि भाई अब हम उन चरणों के पास जा रहे हैं जो जिन चरणों की खड़ाऊ को भरत जी महाराज पूछते हैं। वहां चरण नाम लिया है विभीषण जी ने, तो वो निज चरण सने वो हमको दे। सोई विवेक सोई रहनी प्रभु। अब आया ये विवेक किसका है साहब? विवेक का नाम लेते ही भाई क्या बताएं, आप सब चौंक जाएंगे। बड़े बड़े लोग चौंक जाते हैं उस नाम लेकर। है साहब विवेक, भक्ति होती है वहां विवेक नहीं होता है, विवेक होते हैं वहां पर भक्ति नहीं होती है। पर ये माता मांगती विवेक, वो विवेक, वो कौन सा विवेक? वही केकी वाला विवेक। केके ने जो वरदान मांगा है मंथरा ने सिखा दिया और केके ने मांग लिया, ऐसी केके मूर्खा नहीं थी। केके बहुत विवेकवती थी। केके को तो भगवान ने ही कहा कि माता तू तेरे विवेक पर कायम रहना, मेरी माँ कौशल्या है ये ऐसा विवेक नहीं रख सकती, तू विवेक वाली। क्या विवेक रखूं बेटा? कि देख केवल मुझे बेटा ही मान लोगी तब तो मुश्किल हो जाएगा, तुम विवेक से काम लेना, विवेक से ज्ञान दृष्टि से विचार करो माँ कि मेरा संसार में अवतार क्यों हुआ है, तुम्हारे मन में मेरे प्रति और भावना है, उस भावना को बदलो और मैं कहूं वो काम करो। कि मेरे मन में क्या भावना है? तेरे मन में जानता हूं मैया, तू चाहती है कि भरत को राजगद्दी न मिले और राम को राजगद्दी मिले, तू चाहती है कि नहीं? चाहती तो नहीं। तू भरत के लिए राजगद्दी मांग, मेरे लिए वनवास मांग, दुनिया में तेरा अपयश होगा, लोग तुझे बहुत थू थू करके देखेंगे, ये मेरा अवतार का काम तेरे से ही पूरा होने वाला है। विवेक से सोचो तुम, स्नेह में मत पड़ना। क्या ठीक है? भगवान की और केके की पूरी सलाह हुई थी। सोई विवेक, कैसा दृढ़ रही केके अंत तक। दशरथ जी ने कहा मैं तेरा त्याग करता हूं, कर दीजिए। भरत जी ने कहा कि मैं तेरा त्याग करता हूं, कर दीजिए। सब ने त्याग दिया। राम जी महाराज ने दशरथ जी को कहा कि पिताजी, जब युद्ध समाप्ति के बाद दशरथ जी ने दर्शन दिए तो कहा महाराज आपने जो भरत को और केके को त्यागा है ना, ये शब्द आप वापिस लीजिए। दशरथ जी ने वापिस ले लिए और भरत को कहा चित्रकूट में, देखो भरत केके के लिए तुमने कुछ भी कह दिया तो मेरे मन में तुम्हारे प्रति स्थान नहीं बनेगा। लक्ष्मण जी ने भी एक दो बार राम जी को बोला कि देखो महाराज हमको वन में भेज करके केकी को क्या मिल गया, भरत ने तो राज्य लिया भी नहीं। भगवान ने कहा ये लक्ष्मण नमे मध्यमा माता गर्हणीया कदाचन है, मेरी मझली माँ को तू कुछ नहीं कह सकता, केकी ने जो किया है उसके ऊपर तुमको कोई टीका टिप्पणी का अधिकार नहीं है। भरद्वाज ऋषि ने कहा हे भरत, जिसने संत सभा नहीं सही है वो केके के ऊपर दोष लगाएगा, केके ने अच्छा नहीं किया, वो नहीं। जो सत्संग करेगा वो केके के ऊपर दोष नहीं लगाएगा। भगवान अयोध्या में आए तो सबसे पहले केके के चरणों में प्रणाम किए और केके ने जितना भगवान को चिपट करके रो करके प्रेम के आंसुओं से नहलवाया उतना कौशल्या जी के भी आंसू नहीं आए। इतना केके ने छाती लगा करके आराम को प्रेम के अंदर स्नान करवाया था। बहुत आनंद आया केकई को। राम जी जब शासन करके मतलब ये रावण को मार करके आए, राजगद्दी पर बैठ गए, तब केकई कौशल्या माता के महल में गई। कौशल्या माता के महल में जाकर के और कौशल्या माता के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि बड़ी माँ बड़ी बहन, देखो मैंने जो कुछ किया था वो मेरा दोष नहीं था। आपके मन में मेरे प्रति कोई विचार नहीं आना चाहिए, ये मैंने नहीं किया, ये आपके राम जी के कहने से मैंने किया। मेरा भरत तो राजगद्दी का यू ही अधिकारी था, क्योंकि मेरी शादी हुई थी उस समय में ये तय हो गया था कि इसी का लड़का राजगद्दी पर बैठेगा, क्योंकि केकई बहुत सुंदर थी और दशरथ जी महाराज ने इसी शर्त से विवाह किया था, इसका लड़का राजगद्दी पर बैठेगा तो इसको वरदान मांगने की जरूरत ही नहीं थी। और केकई को भी पता था, कौशल्या जी को भी पता था, कौशल्या जी को ये पता था कि केकई का पुत्र राजगद्दी का अधिकारी है, पर केकई ने कहा कि मेरे पास जो वरदान सुरक्षित है ना, उन वरदानों से मैं राम को राजा बनाऊंगी। तो दशरथ जी महाराज ने कई बार चर्चा की कि केकई तेरे मन में क्या है राजगद्दी के विषय में, कि राम को राजगद्दी पर बैठाना चाहिए। तो स्वयं दशरथ जी महाराज बोलते हैं, तू सराहसी पुनि पुनि मोही, तू मुझे बार बार राम के विषय में सराहना करती थी, तो तेरे के अनुसार ही तो मैंने निर्णय किया, आज तू ये वरदान क्यों मांगती है? नहीं, मैं तो वरदान मांगूंगी। ये क्या है? ये केके का विवेक है। तो सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण सनेव, सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, हम ही कृपा करी देव। एक विवेक में जनक जी को भी लेते हैं। जनक जी महाराज बड़े विवेक वाले। जनक जी महाराज क्यों गए जी वहां चित्रकूट? चित्रकूट जनक जी को जाने की जरूरत ही नहीं थी, नहीं गए थे, वाल्मीकि जी ने नहीं भेजा उनको, वाल्मीकि रामायण में चले जाओ, नहीं आए, अध्यात्म रामायण में नहीं गए, लेकिन तुलसीदास जी ने कहा जाओ। क्यों? सोई विवेक, बड़े विवेक ही थे ये जनक जी महाराज। ज्ञान है, क्या सुंदर गीत ने जो है ज्ञान दिया है सीता जी को। नहीं तो आजकल के पिता होते तो बेटी से यही कहते कि बेटी तू वन में क्यों आई भाई, तेरा तो तुझे तो वन में भेजा ही नहीं था। उसने कहा पुत्री पवित्र किए कुल दो, तुमने हमको पवित्र कर दिया बेटा। जो पति का सुख होता है वही पत्नी का सुख होता है, और जो पति का दुख होता है वही पत्नी का दुख होता है। तू राज महलों में रहती, कभी मेरे यहाँ कभी अयोध्या में, और तेरे पति वन में भटकते हो, तेरी शोभा होती कि मेरी शोभा होती? किसी की भी शोभा नहीं थी। तुमने बहुत अच्छा किया, सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, और रहनी किसकी? यही सीता जी की, सीता जी की रहनी ये हमको दीजिए। तब देखो क्या बोलते हैं हमारे तुलसीदास जी में, सुनी मृदु गूढ़ रुचिर बर रचना, कोमल वचन और बड़े गूढ़ वचन है ये, शत्रुपा के गूढ़ वचन। कितना रहस्य से पूछती, सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण सनेव, तो ये बड़े गूढ़ वचन सुनकर के बोले अच्छी बात है, जो तुम्हारे मन में है शत्रुपा वो सब हमने तुमको दे दिया। मनु ने कहा महाराज इतना ही नहीं है, आप हमारे बेटा बनो तो एक अलौकिक प्रेम होना चाहिए। प्रेम के उदाहरण संसार में दो हैं, एक तो सांप का मणि के प्रति और एक मछली का जल के प्रति, दो ही प्रेम होते हैं। ये दोनों ही प्रेम महाराज हमारे अंदर होने चाहिए। अच्छी बात है, एव मस्तु, जो मांगा सो भगवान ने दिया। तो अब देखो, अब तो देखो तुमने जो मांगा वो हमने दिया, अब हम मांगे वो तुम देओ, कि महाराज हम क्या देने वाले? कि नहीं, अब तुम मम अनुशासन मानी, बसो जाए सुरपति रजधानी, अब तुम जाओ यहाँ से अमरावती जाओ, देवताओं की राजधानी में, वहां पर तुम खूब आनंद से रह करके आओ और फिर अयोध्या के राजा बनो। अयोध्या के राजा बनोगे तब मैं तुम्हारा बेटा बनूंगा, सीधा ही अभी बेटा बन जाऊंगा ये बात नहीं है। ऐसे भगवान इच्छा मय नरवेश समारे हो यूं प्रकट निकेत तुम्हारे, मैं स्वयं तुम्हारे वहां पर प्रकट होऊंगा और अपने अंशों के साथ, अपने तीन और शक्तियों के साथ तुम्हारे यहाँ अवतार लूंगा। और ये आदि शक्ति जो आज सामने आई है वो भी यहाँ, ये मेरी माया है, ये भी यहाँ अवतार लेगी, बहुत विलक्षण ये चरित्र किया जाएगा। इतना कहकर के भगवान अंतरित हो गए, मनु और शत्रुपा भगवान की भक्ति में डूब गए और फिर वे अमरावती चले गए। अमरावती में जाकर उन्होंने निवास किया। यह इतिहास पुनीतयति उमई कही वृषकेत भरद्वाज सुनु अपर पुनी राम जन्म करहेतु। अब राम जी महाराज का जिस कारण से जन्म हुआ उसमें एक और तुमको कारण सुनाते हैं। भरद्वाज जी प्रेम से सुनो। अब वो भरद्वाज जी सुनने की तैयारी करेंगे और याज्ञवल्क्य जी महाराज कल अगला चरित्र सुनाएंगे।
ताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम
जय सीताराम सीताराम सीताराम
जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम
जय सीताराम सीताराम सीताराम
जय सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम
जय सीताराम जय सीताराम सीताराम
जय सीताराम सीताराम सीताराम
जय सीताराम जय सीताराम सीताराम
सीताराम
जय सीताराम
जय सीताराम 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 जय सीताराम
जय सीताराम सीताराम सीताराम
जय सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम
जय सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम
जय सीताराम। सियावर रामचंद्र की
जय।
मुकुटवंशी वाले
की जय।
अनंत श्री हरि रामदास जी महाराज
की जय।
अनंत कोटि सर्व संत महात्माओं
की जय।
देखो कल शाम को